نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير سبق نمبر 151 آیت نمبر 32 سے 59 سورۃ کہف لیسن نمبر 152 آیت نمبر 32-59 سورۃ الکہف آیتوں پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا سبق کا خلاصہ کریں گے اور ہمارا آج کا سبق دیکھنے میں لمبا ہے لیکن پورے سبق کے اندر سے بنیادی چیز ایک ہی نکلتی ہے اس کا سورت کے بنیادی تھیم سے بڑا گہرا تعلق ہے تھیم کیا تھا دنیا کی محبت جو دجل بن کر انسان کو دھوکہ دیتی ہے پیچھے ہم نے ایک مومن اور ایک مسکین کا فرق دیکھا اور جنت اور جہنم کی صورت میں دو مختلف انجام دیکھے آج کے سبق میں ابتدا میں ایک واقعہ ہے دو دوست ہیں دوست دو تھے دو ہی باغ تھے اگر ہم اپنی عقل سے پوچھیں تو ہم کہیں گے ایک باغ ایک کا تھا دوسرا باغ دوسرے کا تھا لیکن ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی بانٹ ہم سے فرق ہے وہ واقعے کے شروع میں ہم بات کریں گے لیکن اس پورے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھا دیا کہ جس کو زیادہ ملا ہے وہ فخر نہ کرے اور جس کو کم ملا ہے وہ دکھ نہ کرے وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جس کو زیادہ ملا ہے وہ بھی امتحان میں ہے نعمتوں کے اس کو شکر کرنا ہے اور جس کو کم ملا ہے اس کے خیال میں اس کو امتحان کیا ہے کہ وہ صبر کرتے نہیں وہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعے میں اس حدیث کی عملی تفسیر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے غم ملے تو صبر کرتا ہے اور اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ جب انسان کو دولت محنت کے بغیر مل جاتی ہے نا تو وہ بعض دفعہ پھر چھچوری حرکتوں پہ آ جاتا ہے پھر ایک اور چیز لفظ ماشاءاللہ کہنے کی برکتیں کیا ہیں وہ آج کے سبق میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے جو آج کے سبق میں لائف از اے فیڈنگ شیڈو زندگی ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے ہم ان آیات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہ دنیا جس کے ملنے پہ اتنا خوش اور جس کے چھننے پہ اتنے غمزدہ ہوتے ہیں ہم وہ بعض دفعہ انسان کے لیے ایک خس و خاشاک سے بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی چلی جاتی ہے تو بلکہ انسان زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے پھر اس میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے مال اور بیٹے باقیات و صالحات کیسے بنے یعنی آج کے سبق کا جو بنیادی ہم دیکھیں گے حصہ زیادہ وہ باقیات و صالحات پہ دیکھیں گے اور اسی طرح سے پھر اس دنیا کے ختم ہوتے ہی کس صورت میں ہم آگے جائیں گے اور اس کے بعد پھر اعمال نامے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل سورت بنی اسرائیل سے اب تک تیسری چوتھی بار اعمال نامے کا ذکر ہے اور آگے آگے آپ دیکھتے ہی جائیں گے قرآن پاک جب اوپر پیک پہ جانے کے بعد اب آگے جائے گا تو نام اعمال کا بہت زیادہ تذکرہ ہوگا اور یہ چیز انسان کو سیلف کانشیس بناتی ہے اور پھر اس کے بعد آدم اور ابلیس کا قصہ جو پہلے بھی ہم تین بار پڑھ چکے یہاں اس میں سے ہمیں ہلکا سا اشارہ دے کر یہ بتا دیا گیا کہ ابلیس کا مسئلہ کیا تھا اور اس نے تکبر کر کے اپنے لیے کتنا نقصان اٹھایا جو کفر اس نے کیا وہی آج اس کے وہ بچے کرتے ہیں جو دنیا کی دولت کو پا کر ناشکری کے رویے اختیار کر لیتے ہیں اور پھر قرآن پاک کا بار بار ایک ہی موضوع کو مختلف طریقے سے پیش کرنا اس کو ہم دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہدایت سے روکنے والے فیکٹرز وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی موجودگی ہدایت سامنے موجود ہونے کے باوجود انسان کو ہدایت کو قبول کرنے سے روکتی ہے اور پھر آخر میں چند باتیں ہیں رسولوں کو بھیجے جانے کے ناطے سے آئیے اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ ہم اس سبق کا حق بھی ادا کریں اور ہم اس میں سے اپنے لیے عمل کی غذا بھی لیں تفسیر دیکھیں گے آیتوں کے ساتھ چلتے ہوئے آیت نمبر 32 سے 44 تک یعنی تقریباً 12 آیات میں ایک ہی قصہ ہے ہم کوشش کریں گے اس کو کہانی کے طور پہ پڑھیں اور پھر آخر میں اس میں سے کچھ عمل کی باتیں الگ سے بھی لیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال کن کے لیے بیان کیجئے جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے اور اس کے بعد قیامت تک جو لوگ اس قرآن کو پڑھیں گے کن کی مثال رجلین دو شخصوں کی رجل سے تثنیہ ڈیول رجل کیا ہے ایک مرد तो रजुलैन दो मर्द, तो बहुत सारे मर्द क्या होंगे, रजुलान, ठीक है, या रिजाल, दोनों तरह से आता है। दो मर्दों की कहानी, दो ब्रदर्स की का किस्सा, और वद्रिप का लफ्ज भी पीछे बात हो चुकी है, दरब व यद्रिबु इद्राब, मारना, और मारने का लफ्ज टू हिट के मानों में भी आता है जब किसी को मारा जाता है, सफर के मानों में भी आता है क्योंकि सफर में भी पांव जमीन पे मारे जाते हैं, और बयान करने टू एक्सप्लेन के मानों में भी आता है क्योंकि जब कोई बात बयान करता है तो हमारे कानों पे वो टकराती है। तो गोया कि यहाँ फिर इसका तीसरा मानी है, और इसी सबक में आपको ये लफ्ज़ दोबारा भी दिखेगा आगे जाकर एक और वाक्या। ये भी अल्लाह सुब्हान तआला की बहुत ही प्यारी सुन्नत है कि वो वाक्यात को बयान करके हमें नसीहत दिलाता है, तो बयान की भी बात को गौर से सुनना चाहिए ताकि हम इसमें से अमल की बात ले सकें। क्या थे ये दो लोग, जालना लिया हदीहिमा जन्नतैन मिन आनाबिन, इनमें से एक को हमने दिए थे दो बाग अंगूरों के, और बागों के अंदर क्या था, वह हफफ ना हुमा, और इन दोनों का घेर दिया था हमने खजूरों के दरख्तों के साथ। पहले तो तसव्वुर में लाइए, बाग जन्नतैन, जन्नत उनसे तस्निया, दो बाग हैं, आनाब इनब की जमा, अंगूर ग्रेप्स के मानों में, और खफफ ना हुम, खा कर रखे खफा खाफाफा, किसी चीज को यूं करना, इंग्लिश में आप लिख लें सराउंड करना। अरब लोगों की आदत क्या थी कि जब भी खजूरों के दरख्त लगाते थे ना तो ऐसे लगाते थे लाइन में, जैसे आप एक दरख्त की बाड़ बनाते हैं, ठीक है। अब जब दरख्तों को इस तरह से लगाया जाए, जैसे आप ऐसे समझिए कि इस वक्त तो आपको हमने ऐसे स्ट्रेट रोज में बिठाया हुआ है ना, लेकिन बाद से कहा खास तौर पर दरसों में सिस्टर्स कैसे बैठती हैं दीवारों के साथ साथ, टिक 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 टिक, और बीच में सारी जगह खाली होती है, सामने कोई नहीं है, तो वो जो दीवारों के साथ लोग बैठते हैं ना वो है खफफ ना हुमा, ठीक है, एजिस पे किनारों पे बैठना। अब इमेजिन करिए कि आपके पास पांच मरले जमीन का टुकड़ा है, आपने उसके चारों कोनों से शुरू करके पूरी बाड़ की बाड़ खजूरों के दरख्त लगा दिए, तो बीच में क्या करें, जगह खाली होती है ना, तो वहां दरसों में तो हम रिक्वेस्ट करते हैं ना कि कुछ लोग तो बीच में आके बैठ जाएं ताकि कोई सामने तो बैठा हो। हाँ, तो अरब लोग जगह को इस्तेमाल करने के लिए क्या करते थे कि खजूरों के बाग के बीच वाली जगह में अंगूरों की बेलें लगा देते थे, ये मुराद है इधर, ठीक है। हफफ ना हुमा, दोनों में लफ्ज क्या छुपा हुआ है, इसका रूट क्या होगा, हफा हफा, ठीक है। उर्दू में लफ्ज होता है हफी, एक होता है खा, ये हा है, फर्क समझिएगा। नखल कहते हैं खजूर के दरख्त को, नखला यानी वादी, नखला का नाम सुना होगा, मदीना के नाम के साथ भी ये लफ्ज आता है, यानी किसी जगह का बेहतरीन बाग क्या होगा कि जिसमें खजूर भी हो और अंगूर भी हो, और अब मदीना के नाते से या अरबों के नाते से किसी बाग में अंगूरों की बेलें होना, ये बहुत पौश बाग था क्योंकि डेजर्ट था, सहरा था, पानी की कमी थी, तो लिहाजा मुराद इधर क्या कि बहुत ज्यादा कीमती बाग था। अंगूरों की बेलों के गिर्द खजूरों के दरख्त इसलिए भी लगे होते थे कि नाजुक बेलें मौसम की शिद्दतों से बच जाएं। फिर क्या हुआ, वजअलना बैनहुमा ज़रअ, फिर हमने इन दोनों बागों के दरमियान खेती का इंतजाम भी कर रखा था। अब ये कैसे होता है, जरा थोड़ा सा फिर इमेजिन करें, बाग दो थे, ठीक है, एक तरफ का इमेजिन करें, फिर दूसरा था, और दोनों के बीच में पानी देने का इंतजाम था, इमेजिनेशन में आ रहा है कि बुनियादी तौर पर वो अंगूरों के बाग थे, चारों तरफ उसके अंगूरों के दरख्त भी थे जिनसे दोहरा फायदा होता था, इन दरख्तों से खजूरें आती थीं और साथ ही साथ हिफाजत का काम भी होता था, दरमियान में काश्तकारी होती थी जिससे अनाज हासिल होता था, और पानी देने के लिए बीच में नालियां खोदी हुई थी, ठीक है, यानी आइडियल बाग, जिसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा खूबसूरत बाग हो ही नहीं सकता जो कि उसमें था। क्या हुआ, अच्छा यहाँ पहली बात देखें कि हम क्या सोचते कि दो लोग थे तो दोनों के दो, एक बाग उसका होता है एक उसका होता, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला हमें अपने तकदीर के मामले भी सिखा रहा है कि दुनिया में किसी को दुगना मिल जाए और किसी के पास कुछ भी ना हो, ये सरासर इंसाफ है, ये अल्लाह की देन है। जिसको दो दे दिए उससे क्या मतलूब था कि एक तुम अपनी जरूरत का रख लो और दूसरे से तुम दूसरों की मदद करो। याद रखिए कि जब हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हर एक का रिस्क मुकर्रर किया, तो बस नॉन मुस्लिम या नॉन इस्लामिक लोग जो होते हैं वो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं अच्छा जी ये बताओ कि अल्लाह का रज़ाक है तो दुनिया में इतने लोग भूखे क्यों मरते हैं, और अगर अल्लाह ताला ने सबका रिस्क रखा हुआ है तो कहत क्यों आया और वहां लोगों के घर क्यों नहीं है, तो जवाब समझ लीजिए इस वाक्य की आड़ में, हल्का सा अंदाजा ले लीजिए इससे कि अल्लाह ताला ने इब्तदा में जब दुनिया बनाई थी ना तो सबके लिए बराबर बराबर हिस्से कर दिए थे, बस देने में, यानी जब बांटा तो किसी को दो ऐसे दे दिए, ऐसे कि जैसे आप जितने लोग बैठे हैं हम उतनी किताबें मंगवाएं और हम गिन के मंगवा लें कि इतने लोग हैं तो इतनी ही किताबें चाहिए होंगी, लेकिन बाद में क्या करें, कोई मिसाल है कि सब्जेक्ट शुरू हुआ और आपको सबको बुक्स चाहिए थी, तो बजाय इसके कि सबके पास जा जा के दें, आपको यूँ पकड़ा दी जाए, तीन इधर पकड़ाई आप इन तीन को दे दें, आपको तीन दी आप, यानी आपको दी कि आप अपने साथ वाले को भी दे लें, ये है अल्लाह की बांट। अल्लाह ने सबके लिए पैदा किया हुआ है सब कुछ, अल्लाह ताला कभी किसी को भूखा नहीं रखता। किया क्या कि कुछ को दो का पकड़ा दिया, किसी को तीन का पकड़ाया हुआ है, किसी को चार का पकड़ाया हुआ है, तो जाहिर बात है कि जब किसी को तीन का पकड़ाया है तो कुछ लोग एकदम कहेंगे ना मुझे नहीं मिली, लोग एकदम जल्दी में आके कहते ना मुझे नहीं किताब मिली, हैंड आउट मुझे नहीं मिला, तो करना क्या है दूसरे से लेना है। इस्लाम ने जो दौलत की बांट का नजरिया रखा था उसके अंदर यही बांट थी, ये ज़कात उशर और सदकात जो है ये सिर्फ इसीलिए आम किए गए कि जो काम अल्लाह ने करना था वो तुमसे करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ समझ की बात है, हम सब अपने ऊपर चेक कर लें, मेरे पास अपना ही है सिर्फ, या अपनी ज़रूरत से भी ज़ायद है, या फिर मेरे पास मेरी ज़रूरत का भी नहीं है, तीन ही मुमकिन सूरतें हैं ना। अगर वो लोग जिनके पास उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है अगर वो उनको देने लग जाएं जिनके पास ज़रूरत का भी नहीं है, तो दुनिया में एक शख्स भी भूखा नहीं मरेगा और इस दुनिया में अमन भी होगा, चैन भी होगा और वो आइडियल सोसाइटी होगी। लेकिन चूंकि इंसान के नफ्स के अंदर अकड़ है और बुखल है और स्टिंजीनेस है, कमज़ोर है, जल्दी थुड़ दिला है इंसान, तो लिहाजा ऐसा शख्स जो है फिर वो ऐसी चीज़ों पे दूसरों को देने की बजाय कोशिश क्या करता है कि बल्कि उसका भी मुझे ही मिल जाए। और ये वाक़ात आप देख चुके हैं, अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि अगर इब्ने आदम को सोने की भरी हुई एक वादी दी जाए, यानी वैली ऑफ गोल्ड, भरी हुई सोने से एक वादी हो, और उसके साथ फिर वो दूसरी की भी ख्वाहिश करेगा, ये नहीं कहेगा कि चलो जिसके पास कुछ नहीं है मैं उसको दे दूँ। और यहाँ याद रखिए कि यहाँ यानी मालदार जो शख्स है ना इससे मुराद काफिर है, और जो यहाँ अभी दूसरा दोस्त दिखेगा ये गरीब है, असल में कुरैश मक्का को दिखाया जा रहा है। पीछे आपने पढ़ा था कि उन्होंने अल्लाह के नबी से एक मुतालबा किया था कि ये गरीब लोग आपके पास होंगे तो हम नहीं बैठेंगे, तो क्या हुक्म दिया आपको, वसबिर नफ्सा का माल लजीना या दूना, आप उनके पास बैठे जो अल्लाह को पुकारते हैं। तो यहाँ असल में यही बता दिया गया कि देखो ये मक्का वाले सरदार भी हैं, मालदार भी हैं, साहिब जायदाद भी हैं, इनके पास दौलत भी बहुत है, दूसरी तरफ तौहीद परस्त हैं, मोमिन हैं, अल्लाह पे भरोसा करने वाले हैं, बिलाल और अम्मार जैसे गरीब लोग हैं, तो इनको ज़रा ये वाक्या सुना दो कि आज अगर तुम्हें ज़्यादा मिला तो फ़ख्र ना करो, ये एक आजमाइश है। कैसा था वो बाग, दोबारा बाग पे आ जाइए, आयत नंबर 33, किल तल जन्नतैनि आतत उकुलहा, दोनों बागात अपना फल खूब देते, किल तल जन्नतैन, दोनों बागों में फल खूब आता था। देखिए अंदाज कितना खूबसूरत है, खुद देते थे ऐसे लग रहा है कि इनसे अपनी मर्जी से फल आ रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता, आता तो पीछे से लई के हुक्म से था, लेकिन अल्लाह ताला बताते हैं कि वो फल खूब लाते थे, जिसको उर्दू में हम कहते हैं ना फल खूब लेकर आते थे, अब बाग खूब तो नहीं ला रहे होते लेकिन कहने का एक अंदाज है, क्या था आतत उकुलहा, आतत का लफ्ज वही है जो आता याती और उतुल किताब में हम पीछे पढ़ चुके, आने के मानों में जब इसके साथ बा लग जाता है तो लाने का मानी हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या देखिए, आतत उकुलहा, आता था फल उनका, उकुल लफ्ज कहते हैं मेवे को, फल, अब ये फ्रूट के मानों में भी हो सकता है और किसी भी मेहनत के फल में भी हो सकता है, अरबी जुबान में फल के लिए कई लफ्ज हैं, फवाकेहा, फाकेहत उनकी जमा, समर का लफ्ज बहुत आ रहा है इस सबक में, अब देखेंगे तो समर भी फल है लेकिन वो ईटेबल हिस्सा होता है, खाए जाने वाला हिस्सा, लेकिन उकुल मेवा है, फ्रूट्स के मानों में भी यहाँ आया। वलम तस्लिम मिन हुशैया, और वो इसमें से कुछ भी कम नहीं करते थे, मतलब ये कि ये बाग साल में दो बार फल देते थे, गर्मियों सर्दियों का फल था, खजूरें भी उगती थी, फिर उसके बाद अंगूर भी आ जाते थे और मौसम के मुताबिक खूब फलते फूलते थे, पैदावार में कोई कमी नहीं आती थी, और इन बागों का जो मालिक था वो कई साल से इनकी पैदावार से मुसलसल फायदा उठाता था, तो उसने क्या सोच लिया कि ये हमेशा रहेगा। भूल ही गया कि ये अल्लाह ताला के हुक्म से इस तरह हो रहा है, जब अल्लाह हुक्म उठा लेंगे चीज पीछे हो जाएगी। वफज्जरना खिलालहुमा नहरा, और हमने जारी कर दी इनके दरमियान एक नहर भी, पानी का इंतजाम भी मौजूद है, यानी बेहतरीन किस्म का था बाग। हुआ क्या, वकान लहू समर, और उसके लिए फल भी था। अब इससे क्या मुराद है, इसका एक मफहूम तो वही है कि जब दोनों का आपस में मुकालमा हो रहा था, जो भी आगे होगा, इस वक्त वो दोनों जिस बाग में खड़े थे ना, वहां फल था, ये मुराद है। यानी कान लहू समर, इसका पहला मानी क्या है कि जिस वक्त वो दोनों बातचीत कर रहे थे, उस वक्त दरख्तों पे या पौधों पे या बेलों पे फल भी लगे हुए थे, ठीक है, पहली बात है। इसका दूसरा मानी भी है, और वो क्या है कि इस शख्स को अल्लाह ने औलाद भी दे रखी थी, क्योंकि जो लव समर है ना, ये औलाद के लिए भी आता है। इंसान के लिए उसकी औलाद की वही हैसियत है जो किसी दरख्त के लिए उसके फल की होती है। और लव समर जो है ना, समर समरत उनकी जमा, और इससे फिर अस्मार, जमा दर जमा। एक छोटा सा असूल समझ लें कि अरबों में जमा दर जमा भी होती है। बाज दफा हम एक लफ्ज की जमा समझते हैं लेकिन वो दूसरे की जमा होती है, तो यहाँ मुराद है खूब फल देने वाला दरख्त और बाग, कि जहाँ से अल्लाह ताला ने इनके लिए बहुत ज्यादा फल रखा हुआ था, तो वो सब कुछ था, और औलाद भी है, तो मुराद दोनों ही ठीक है। और आप देखेंगे ये बात भी कि जहाँ अल्लाह ताला दौलत देता है ना, वहाँ फिर औलाद भी देता है, माल भी देता है, और ऐसे ही लगता है कि बस उसके पास, वो कहते हैं ना, इनके घर में तो हुन बरसता है, जहाँ दौलत होगी माल होगा। किसी को भी देखें अपने खानदान के या दोस्तों में से, अगर खुशहाली आती है तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बच्चे भी पढ़ लिख जाते हैं, घर भी अच्छा है, सब कुछ इधर से उधर उधर से उधर। और किसी अपने गरीब रिश्तेदार का सोचें तो ऐसे लगता है कि एक के साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी है, एक चीज के साथ दूसरी आती है। ये अल्लाह ताला की आजमाइश भी होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे सेहत होती है तो चेहरे पे खूबसूरती भी आ जाती है, और सेहत अंदर ना हो तो चेहरा जो है वो कमजोर और मुरझाया हुआ और बिल्कुल ऐसे बुझा हुआ भी लगता है। तो गोया कि अल्लाह सुबहाना ताला ने उसको माल के साथ औलाद भी दी थी। अब हुआ क्या, जब वो अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था, फकाल अली साहिब ही, तो उसने कहा अपने दोस्त से, कब के, वहुआ यो हाविर हु, जबकि वो इससे बातें कर रहा था। ये जो लफ्ज है ना, यो हाविर हार से है, हावरा, उर्दू में लफ्ज मुहावरा हम बोलते हैं ना, प्रोवर्ब के मानों में वो भी ये लफ्ज है, मुहावरा, एक दूसरे से बातचीत करना। और उर्दू में इसके लिए सबसे मुनासिब लफ्ज है तबादला ख्यालात करना, किसी पर फौकियत जतलाना माल की वजह से। ज्यादा बुरा उस वक्त होता है जब उसको एहसास कमतरी दिलाया जाए, तो यहाँ इस शख्स का ये जो मुहावरा था ना, ये बड़ाई का अंदाज था, खुद बड़ा बनने वाला अंदाज था। क्या कहा, अब आगे से आप कॉमास लगा लें या हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ से उस शख्स का कॉल शुरू होता है, किसका, जिसके दो बाग थे। और देखिए बाग दो थे, जहन में कितना ज्यादा डिसेंट और वेल ऑफ किस्म का शख्स आता है, लेकिन बोला तो कितनी घटिया और नीच बात की, अना अक्सरु मिनका मालन, मैं तुमसे ज्यादा हूं माल में, वाअज्जु नफरा, और बहुत बड़ा हुआ हूं नफरी के एतबार से भी। देखो मेरे पास माल भी ज्यादा है और लोग भी ज्यादा है, और जहां माल ज्यादा होता है वहां लोग भी ज्यादा होते हैं। जब आप खूब खाते पीते होते हैं ना, तो लोग भी बहुत आएंगे आपके घर, मेहमान भी बहुत आएंगे, खातर बड़ी अच्छी होती है, दोस्त भी आ जाते हैं, लोग दूर दूर से आके निस्बतें जोड़ते हैं ताकि किसी मुश्किल वक्त में आप उनके काम आ सके। और माल जाता है ना, तो सच्ची बात है ऐसे सारे दोस्त भी चले जाते हैं, फिर कोई आता ही नहीं है। फिर लोग कहते हैं क्या अब इनके जाना, अच्छा सलाम कर लेंगे, अच्छा फोन कर लेंगे, अच्छा जाएंगे, आखिरी दिन फिर जाते जाते फोन करते हैं, आई थी बस आपको मिलने आना था, फिर बाजारों के चक्कर ही बड़े हो गए, फिर मैं वापस, कल मेरी फ्लाइट है, जा रही हूँ। और कई रिश्तेदारों का हम दिल तोड़कर जहाज में बैठ जाते हैं। कभी भी जहाज में बैठने से पहले सोचा करें कि कोई ऐसे रिश्तेदार हैं मेरे जिनकी नजरें लगी हुई थी, उनको पता था कि मैं आई हूँ अपने मुल्क में और मैं उनको मिले बगैर जा रही हूँ। अपनी ज़िंदगी का असूल बनाए, सबसे पहले महरूम और डिप्रेस किस्म के लोगों को विज़िट किया करें। एक दफ़ा आप चले गए ज़रा उन लोगों को मिलने जिनकी दुनिया बड़ी वसी है, वो तो रोज़ आपको बाज़ारों में ले जाएंगे, बुटीक्स में ले जाएंगे, पार्लर्स में ले जाएंगे, और रोज़ शाम को किसी न किसी दावत का आपको बगैर बुलाए इन्विटेशन मिल जाएगा, क्योंकि आप बाहर से आए हैं। तो आपका जाना तो उनके लिए एक बड़ी ऑनर रखता है। और बहुत सारे हमारे ऐसे गरीब रिश्तेदार बेचारे महरूम रह जाते हैं, यहाँ भी तसव्वुर में ऐसे ही आता है। बिल्कुल आप इमेजिन करें, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई सेठ साहब है, बहुत खाते पीते, हाथ में दो दो सेलफोन पकड़े हुए, पुश्त के पीछे दोनों हाथ बांधते हुए अकड़ती हुई चाल है, और यूं करते हुए दिखा रहे हैं, ये देखो मेरी फैक्ट्री है, ये मशीन है, ये हमने इतने की ली थी, बोली। और दूसरा बेचारा जो गरीब साथ था वो और ही दबता जाता है। तबजीर और इसराफ की बदतरीन मिसाल है। देखिए, अल्लाह ताला जब किसी को माल देता है तो मना नहीं करता कि आप उस माल से फ़ायदा उठाएं, लेकिन जब हम इससे दूसरों का दिल जलाते हैं तो बहुत तकलीफ़ की बात है। एक वो होता है आप उनके अंदर बड़े बने जो खुद भी बड़े बनने के शौक में है, कोई पौश महफिल, कोई किटी पार्टी, कोई है बड़ा फंक्शन, किसी रिजॉर्ट में बैठे हैं, वो भी डायमंड के रिंग्स घुमा रहे हैं, आप भी घुमा लीजिए, चलिए ठीक है, सब एक जैसे हैं। ये भी बुरा है, लेकिन ये तो बहुत ही बुरा है कि वो लोग जिनके पास माल नहीं है आप उधर माल का दिखावा करें, जिनके पास खूबसूरती नहीं है आप वहाँ जाके खूबसूरती का दिखावा करें। और बास दफा लोग अपनी औलादों का दिखावा करते हैं, मेरे बच्चे ये पढ़ते हैं, उन यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। अब हो सकता है उन बेचारों के बच्चे ही ना हो, और हैं भी तो उन यूनिवर्सिटियों में ना पढ़ते हो, और आप कभी अपने बच्चों के नंबर्स की जो बातें करते हैं। और आप देखिए, ये इतनी घटिया सोच होती है कि जब लोग अपने माल को इस तरह ब्रांडेड करके लोगों के सामने रखें कि लोग मुतासिर हों। कभी आप देखें कि वो लोग जो बड़े लोग कहलाते हैं या उनको मजा आता है जब लोग उनको बड़ा कहे, तो वो लोग अक्सर लोगों को मुतासिर करेंगे ना, तो चीज बाद में बताएंगे, पहले बुटीक का नाम बताएंगे, वहां गई थी, उस स्टोर से लाई हूँ, वो लिफाफा खोल खोल के सामने रखेंगे। यानी मुतासर करने के लिए ब्रांडेड चीज़ों के पहले नाम लेते हैं, फिर दिखाते हैं, और बाद दफा अगले बेचारे को पता ही नहीं होता कि ये कोई ब्रांड है। वो कहते हैं जब वो क्या होता है, तो सारी शान चली गई। खूबसूरती हो या कोई नेमत हो, उसको छुपा के रखें। अपने दिल में शुक्र गुजारी कि अल्लाह तूने मुझे नरम कपड़ा दिया, तूने मुझे सॉफ्ट चीज़ दी, मेरे घर में नरम कुशन है, ये मेरे लिए। और कभी आपको लगे ना आपके घर में कोई गरीब बंदा आ रहा है, तो यकीन करें थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना इस तरह की, जो बहुत ही पंपी सी हैं, उसको उठा दें। उनका दिल क्यों जलाना, दुख होगा। हम ये तो कर नहीं सकते कि आधी उठा के उनको दे दे, जैसे ये शख्स नहीं कर रहा कि दो में से एक बाग अपने दोस्त को दे। हाँ, ये हम बहुत कर रहे होते हैं, बल्कि ऐसे गरीब लोगों के सामने जब लोग बैठते हैं ना, तो मैंने देखे और ही खुलते हैं, क्योंकि इनको पता है इन्होंने आगे से बोलना ही कोई नहीं। देखिए ना, आप अपने जैसों में बैठी थी, आप कहती हैं ये मैं मार्क्स एंड स्पेंसर से लाई, वो कहती है जी मैं ये डगनम से लाई, आपसे वो क्यों मुतासर हुई। लेकिन अब अंदर वो एक भड़ास है ना बड़े बनने की, इतने बड़े बन गए, तो फिर अमूमन लोग ऐसे लोगों में जिनको बेचारों को इन चीज़ों का नहीं भी पता होता ना, तो उनके सामने बातें करते हैं, तो ये बदतरीन बात है। दूसरे का दिल जला के आप बड़े बने तो क्या हुआ। ये तो ऐसी है कि आपने अपना कद लंबा करने के लिए किसी की लाश नीचे रखी, उस पर खड़े हो गए। कभी बातें करते हुए सोचा करें कि किसी के दिल पे खुशी हो रही है कि नुकसान। और याद रखिए, ये किसी की मोहब्बत लेने का एक छोटा सा घर भी है। आप जिनके अंदर बड़े बड़े बन के दिखा रहे हैं ना, अब उनको क्या हुआ, वो आपकी से मुतासिर तो हो सकते हैं, उनके दिल में आपकी रौनक तो आ रही है, लेकिन आपसे मोहब्बत तो नहीं करेंगे, तो काबुल ही कर सकते हैं ना, घुड़ेंगे। इसके बरक्स अगर आप उनके बिल्कुल बराबर हैं, ऐसे गरीब रिश्तेदार हैं, आप उनके साथ आते हैं, आप कहते हैं मैं तो जमीन पे बैठूंगी, और मुझे तो नीचे ही अच्छा लगता है, वो छोड़े कुशन में इधर ही बैठ जाऊंगी, देखो मुझे और कोई गोश्त नहीं खाना, ये नहीं खाना, मेरे लिए तो दाल चावल बनाना। आप अपने आप को उन जैसा बना के दिखाएं, और हम सिर्फ नोट करके देखें, खास तौर पे हमारा जो दिखावा होता है ना इन चीज़ों का, वो अमूमन रिश्तों नातों और शादी ब्याह के मौके पे होता है, और ऐसे वक्तों में फिर तकलीफ में होते हैं। मैंने अक्सर देखा है, हमारी भी फैमिली में हर तरह के लोग हैं, कुछ बाहर के मुल्कों में रहते हैं, तो बाज़ माएँ बेचारी अपनी बेटियों के लिए, अभी वो 12-14 साल की होती है ना, तो जो बाहर रिश्तेदार होते हैं उनको फिर कह कह के, अच्छा इसके लिए एक बेड सेट ले आओ, अच्छा इसके लिए डिनर सेट ले आओ, क्रॉकरी ले आओ, क्यों कि बाहर से आए बता सकेंगे कि हमने भी बाहर से मंगाया। यकीन करें वही चीज़ें पाकिस्तान में भी मिलती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो यहाँ से सस्ती मिल जाती हैं, पता नहीं क्यों, शायद ओवरहेड एक्सपेंसेस कम होते हैं उनके स्टोर्स के और इनके, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कल बेटी के कह सकेंगे ससुराल में ये बाहर से बुलाया था, ये खाला से मंगवाया था, ये फलां से मंगाया था, और नाम बन जाए। तो मोमिन इन चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को खाली समझता है, کسی پر فوقیت جتلانا، مال کی وجہ سے دوسرے کو احساس کمتری میں ڈالنا، یہ تو بہت ہی زیادہ تکلیف کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں اس شخص کی ایک خوبی دیکھیے کہ مال آنے کے باوجود اس نے غریب دوست سے تعلق نہیں توڑا، یہ خوبی کی بات ہے۔ بہت سارے لوگ تو دولت کے آتے ہی غریب لوگوں سے دور ہی ہو جاتے ہیں، پہچانتے ہی نہیں، وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں ہاں یہ ہمارے پرانے خدمت گار ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور غریب رشتہ داروں سے تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ غریب لوگوں سے تعلق بھی اس لیے ہوتا ہے کہ ذرا ہم سے کوئی تو مرعوب ہو، کسی پہ تو ہم ذرا اپنا روب ڈال سکے۔ تو یہ ساری مال کی خرابیاں ہیں جو دجل ہے دنیا کا۔ خیر آگے دیکھیے کیا ہوا، اس نے تو اپنی بڑکیں مار لیں اور اپنے آپ کو بڑا بھی کہہ دیا، عزو عزیز سے نفر نفری کو کہتے ہیں، عدد کو کہتے ہیں۔